8 मई 2020 का शुभ दिन का संदेश, जैसा कि हमने कल भ्रम के विषय में कुछ जानने का प्रयत्न किया है, भ्रम क्या है, भ्रम की अनुभूति कैसे करनी चाहिए, उसी से संबंधित उस विषय को मैं फिर से उठाती हूँ। धारणायक उपनिषद में वेद कहते हैं भ्रम के विषय में, जो पृथ्वी में रहता हुआ पृथ्वी से अलग है, जिसको पृथ्वी नहीं जानती, जिसका पृथ्वी शरीर है, जो पृथ्वी के अंदर रहकर नियम में रखता है, ये तेरा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। सरल रूप में और उपलक्षण में ये भेद है। सबल का अर्थ होता है सगुण, उपलक्षण निर्गुण के लिए है। सबल रूप में और उपलक्षण में ये भेद है कि सबल रूप में बाह्य शक्ति से विशिष्ट रूप कहा हुआ होता है, और उपलक्षण में उसके द्वारा उसमें शक्ति देता हुआ केवल स्वरूप होता है, चेतन तत्व का शुद्ध स्वरूप। व्यक्त ही मूर्त अमूर्त से परे ब्रह्म का अव्यक्त शुद्ध स्वरूप है। वह शुद्ध और पाप से ना बिंधा हुआ है, शुद्ध चेतन तत्व ज्ञान वाला नहीं है, किंतु ज्ञान स्वरूप ही है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म सत्य ज्ञान और अनंत है। वह शुभ ज्योतियों का ज्योति है। ब्रह्म का शुद्ध स्वरूप प्राय नेति नेति निषेध मुख शब्दों से वर्णन किया गया है, क्योंकि उसका स्वरूप क्या है ये बात तो आत्मानुभव से ही जानी जा सकती है। उपदेश केवल यही हो सकता है कि ज्ञात वस्तुओं से उसका परे होना जिंचा दिया जाए, जैसा कि महर्षि याज्ञवल्क्य ने देवी गार्गी को उपदेश दिया है। हे गार्गी, इसको ब्रह्म अक्षर कहते हैं। वह न मोटा है, न पतला है, न छोटा है, न लंबा है, न लाल है, उसमें कोई रंग नहीं है, बिना स्नेह के है, बिना छाया के है, बिना अंधेरे के है। वह वायु नहीं है, आकाश नहीं है, वह असंग है, रस से रहित है, गंध से रहित है, उसके नेत्र नहीं, श्रोत्र नहीं, वाणी नहीं, मन नहीं, उसके तेज जीवन की गर्मी नहीं, प्राण नहीं, मुख नहीं, परिमाण नहीं, उसके अंदर नहीं, उसके कुछ बाहर नहीं, ना वह कुछ भोगता है, ना कोई उसको उपभोग करता है। जो आंखों से दिखलाई देने वाला नहीं है, जो हाथों से ग्रहण नहीं किया जा सकता, जिसका कोई गोत्र नहीं है, जिसका कोई वर्ण रंग अथवा आकृति नहीं है, जिसका ना भौतिक चक्षु है, ना क्षोत्र है, जिसके ना हाथ हैं, ना पैर हैं, जो नित्य है, विभू है, सर्वव्यापक है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, जो नाश रहित है, जो सब भूतों का योनि है, उसको धीर लोग देखते हैं। वहाँ ना नेत्र पहुँचता है, ना वाणी पहुँचती है, ना ही मन पहुँचता है, ना समझते हैं, ना जानते हैं, जैसे उसको उपदेश करे, वे जाने हुए से निराला है, वो न जाने हुए से अलग है। ये सुना है उन विदों से जिन्होंने हमारे लिए उसकी व्याख्या की है। जब ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश उदय होता है तब वहाँ न दिन है न रात है, न सत्य है न असत्य है, न व्यक्त है न अव्यक्त है, वहाँ केवल शिव है। ये निर्गुण तत्व को लेकर के हमने बातचीत की। शुद्ध चेतन तत्व जड़ तत्व से विलक्षण है। वैशेषिक दर्शन में बतलाये हुए द्रव्य सदृश किसी गुण कर्म अथवा समवाय की अपेक्षा नहीं रखता। उपनिषदों में महत्व से उसकी विचित्र व्यापकता और अनुत्व से विचित्र सूक्ष्मता का न कि परिचिनता का निर्देश किया गया है। जैसे उपनिषदों में कहा गया है अणु नियान महत्व नियान, अणु से अणु, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और महान से महत्व है वो ब्रह्म। महानतम विभु आत्मानम मत्वा धीरो न सोचती, उस महान विभु आत्मा को जानकर धीर पुरुष शोक से परे हो जाता है। शुद्ध चेतन तत्व अपरिणामी निर्विकार निष्क्रिय केवल ज्ञान स्वरूप कूटस्थ नित्य है। जड़ तत्व विकारी सक्रिय और परिणामी नित्य है। जड़ तत्व में ज्ञान नियम और व्यवस्था पूर्वक क्रिया चेतन तत्व की सन्निधि मात्र से है। निष्कलम निष्क्रियम शांतम निर्बद्धम निरंजनम वह निर्भयभ है, निश्चल है, शांत है, निर्दोष है और निर्लीप है। अनेज भेकम मनसोज भी अडोल, एक मन से बढ़कर भेद वाला सर्वत्र व्यापक होने के कारण गीता में इसका विस्तार के साथ वर्णन आता है। गीता अध्याय 2:24 का श्लोक है, ये आत्मा अच्छेद्य है, ये आत्मा अधाय है, अकलेद्य है, अशोष्य है, तथा ये आत्मा निस्संदेह नित्य सर्वव्यापक अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। गीता अध्याय 3:27 में संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए हुए हैं, तो भी हंकार से मोहित हुए अंतःकरण वाला पुरुष मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। 3:28 परंतु हे महाभाव, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्वों को जानने वाला ज्ञानी पुरुष संपूर्ण गुण गुणों में बच रहे हैं ऐसा मानकर संसार में आसक्त नहीं होता। गीता अध्याय 9:10 हे कौन्ते, मेरी परम तत्व की अध्यक्षता से प्रकृति चर अचर जगत को रचती है, इस हेतु से जगत सदा परिवर्तित होता रहता है। और जो पुरुष समस्त कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति से किए हुए देखता है तथा आत्मा को अकर्ता देखता है, वह देखता है, वही तत्व ज्ञानी है। हे महाभाव सतराज और तम, ये प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुण अविनाशी आत्मा को शरीर से बांधते हैं। जब पुरुष गुण अथवा त्रिगुणात्मक प्रकृति के सिवा किसी दूसरे को कर्ता नहीं देखता है और तीनों गुणों से अतीत परम शुद्ध आत्म तत्व को तत्व से जान लेता है, यही मेरे स्वरूप परमात्म तत्व को प्राप्त होता है। उदासीन बदासीनों गुण योना विचार लेते गुणा बतंत इत्तेव वो अतिष्ठति निंगते, गीता अध्याय 14:23। जो उदासीन के समान साक्षी भाव से स्थित हुआ जीवन यात्रा करता हुआ गुणों से विचलित नहीं किया जा सकता है, और जो गुण ही गुणों में बरतते हैं ऐसा समझकर स्थिर शांत रहता है, उस स्थिति से चलायमान नहीं होता है, वह गुणातीत कहलाता है। ब्रह्म के इस विषय में हमें ये ज्ञान लेना भी आवश्यक है कि ब्रह्म को जानने पर क्या होता है। तुलसीदास जी लिखते हैं, तुम्ही जानत तुम्ही हो जाई। हे भगवान, जो आपको जान लेता है वो क्या बन जाता है? तुम ही बन जाता है। और वेदों में भी एक जगह ऐसा मंत्र आया है, ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वह ब्रह्म के समान ही हो जाता है। मोक्ष प्राप्ति क्या है? मोक्ष किसे कहते हैं? जब मनुष्य अपनी आत्मा को शरीर से और इंद्रियों से और इंद्रियों के विषय से अपने को अलग कर लेता है तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है, उसे ही हम विदेह मुक्ति भी कह सकते हैं। इसलिए अगर हमें आत्म तत्व परमात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी आत्मा शरीर इंद्रियों और इंद्रियों के विषय में संलग्न ना हो, हम अपने को आत्मा ही समझें और आत्मवत व्यवहार ही दूसरों से करें। संसार के प्रपंच राग द्वेष आसक्ति मोह लोभ में फंस कर मनुष्य आत्म तत्व को भूल जाता है और अपने को एक भौतिक शरीर मानकर भूल जाता है, सुखी और दुखी होता है। इसलिए हमें प्रयत्न ही करना चाहिए कि प्रतिदिन हम सब स्वाध्याय करें और आत्म तत्व को जड़ तत्व से अलग समझने का और जानने का प्रयत्न करें। यह माता दी गीता माँ।